नाज़रीन में से सवाल आया है कि ये जो सिचुएशन मसला फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है, हर एक तबके का एक अपना वजीफ़ा बनता है,
सही
और रहबरे मौज़म भी ताकीद करते हैं, इमाम ख़ुमैनी भी ताकीद करते हैं, और बाकी भी जितने अफराद हैं वो करते हैं कि हर कोई अपना वजीफ़ा अदा करे। तो मामूलन जो सवाल आया है और पूछा भी जाता है इस तरीके का कि एक आम तबके में रहने वाला एक शख्स, एक औरत मसलन है, मर्द है एक, वो किस तरीके से इस मसले में इनकी हिमायत कर सकता है, क्योंकि ये आम बंदा है, इसके पास तो कोई वसायल नहीं है, मामूलन ये
सही
सोचते हैं, तो इनकी हिमायत का तरीकाकार क्या होना चाहिए?
एक वाक़या नकल कर सकते हैं जवाब में। हज़रत ईसा के बारे में वाक़या नकल है कि हज़रत ईसा अपने हवारियों के साथ एक जगह से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पे एक खंडर देखा और देखा कि आसार अजाब हैं वहाँ पे। तो हवारियों ने सवाल किया हज़रत ईसा से कि ए नबी खुदा, ये बताइए कि इस जगह पे क्या रोनमा हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, क्यों यहाँ पे ये खंडर में तब्दील हुआ ये आबाद मकान। तो हज़रत ईसा ने वहाँ पे आवाज़ लगाई कि क्या तुम में से कोई है जो मेरे सवाल का जवाब दे। तो कहते हैं कि वहीं पे ही एक शख्स जो है वो ज़िंदा हुआ और वो सामने आया। तो हज़रत ईसा ने उससे पूछा कि ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। उसने कहा यहाँ पे अज़ाब इलाही आया है। किस वजह से? वो कहता है कि हमारा जो हुक्मरान था वो ज़ालिम था और जो हमारी कौम थी वो उसके ज़ुल्म पे खामोश थी, यानी वो कत्ल करता था, वो नारवा उसका सिलसिला था रईयत के साथ, दूसरों के साथ और बाकी सब चीज़ें। तो क्योंकि ज़ालिम और जाबिर था तो हमारी आवाम उस पर ख़ामोश थी और ख़ुदा ने बिलाखर जो है इसके ऊपर जो है वो अज़ाब इस कौम पर नाजिल किया। तो लेकिन मैं इस कौम में वो शख्स था कि जो तन्हा वो फ़र्द था कि जो इसको ज़ालिम समझता था, बाकी सब उसके ज़ुल्म में खामोश थे, कहते थे क्योंकि बादशाह है, उसका हक़ है, वो कर सकता है, लेकिन मैं वो तन्हा शख्स था कि जो अकीदे के लिहाज से इन सब से मुख्तलिफ था। तो हज़रत ईसा ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि इस अज़ाब में क्या तुम भी मरे या नहीं? कहता है मैं भी मरा। पूछा क्यों मरे? कहा कि मैं लोगों को बताता नहीं था, एक आम फर्द की हैसियत से जब
यानी
मुझे ये
जालिम मान
पता
भी रहा
है,
था, दिल
मान
में
भी रहा था,
नफरत
सब
भी
दिल में
थी,
नफरत है,
लोगों तक नहीं
यानी
पहुंचाता
बाज़
था।
औक़ात लोग कहते हैं कि जी दिल में खाली नफरत रखना काफ़ी है,
हाँ
नहीं, आम इंसान जो मुआशरे में रहता है, देखें हम पाकिस्तान के जब मसाइल पढ़ते हैं ना तो हम बरतानिया के बारे में क्यों बयान करते हैं कि बरतानिया ने बरसग़ीर पर आके हुकूमत की, जुल्म किया, वो सब चीज़ें बयान करते हैं। तारीख़ में जो है वो हम बाकी चीज़ें भी बयान करते हैं। इसी तरह हर एक फ़र्द जहाँ पे भी उसको पता है कि इस दौर में मसलन फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो मज़लूम हैं, यमन के मुसलमान मज़लूम हैं, कश्मीर के मुसलमान मज़लूम हैं, इन सब के बारे में वो गुफ्तगू करे अपने बच्चों को। हद अकल अगर दूसरों को नहीं बता सकता, अपनी औलाद को तो बता
औरत को
सकता,
बताए, बिल्कुल
जो घर में लोग हैं उनको बता सकता है।
सही
तो हज़रत ईसा ने जब उससे कहा कि तुम्हें क्यों सज़ा मिली, वो कहता है कि मैंने लोगों को बताया नहीं इसलिए मैं भी इस अज़ाब में शरीक हो गया। यानी खुदावंद मुताल का अगर कहर और अज़ाब किसी पर आए
जी
लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ दिल तक वो बात रखें। देखें मेरी तवान जो है वो अगर बात करने से, लोगों को आगाही देने से, मसलन अगर कोई टीचर है तो जहाँ पे हमारे पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि ये सिवाय इसराइल के बाकी तमाम ममालिक जो हैं उन पे
सफ़र कर
काबिले
सकता
हाँ
हूँ
सफ़र कर
मैं।
सकते हैं, तो ये पासपोर्ट पे लिखा हुआ ये जुमला काफ़ी है
बिल्कुल
समझाने के लिए।
बिल्कुल
हमें खौफ नहीं होना चाहिए किसी का, अगर हमें नहीं पता तो खुद सीखें, पढ़ें। इसी तरह मतलब
एग्जैक्टली
माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम हो रहा है इससे अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है,
बिल्कुल
लेकिन ये कि इसी हद तक कि मैं लोगों को बताऊं, हद अकल जो लोग हैं जिस तरह से मैं उसको बुरा समझता हूं ये भी उसे बुरा
बिल्कुल
समझे।
ऐसे बिल्कुल
जब आपके मुल्क में लिखा हुआ है कि ये काबिल कबूल नहीं है तो बताए बयान
बताना
करें इस चीज़
चाहें
को।
जा बिल्कुल। आ हैदर, आप इस बारे में क्या अर्ज़
बिल्कुल
करेंगे?
ऐसे ही है, तकरीबन आगा ने बेहतरीन अंदाज से बयान कर दिया है। बस ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बिल्कुल ये सवाल इस हवाले से भी थोड़ा सा मुहिम है कि बाज़ अफराद जो कुछ भी नहीं कर पाते थे वो यौमुल कुद्स की रैलियों में शिरकत करते थे
सही
और
बात
वो
सही
समझते थे कि यौमुल कुद्स की रैली के अंदर जो मैंने शिरकत कर ली, जो कि वाकई अगर यौमुल कुद्स मनाने के अतबार से रैली की जो अहमियत है वो अपनी जगह पर महफूज है, बिल्कुल। लेकिन इस साल उनके जहनों में ये है कि इस साल जो सूरत हाल
रैली
कोरोना
तो
की
हाँ
वजह से
कोरोना
आई
की
है
वजह से
तो
हालात
अब
हैं।
शायद यौमुल कुद्स के लिए वो अहतमाम कैसे होगा और वो मैं यौमुल कुद्स कैसे बनाऊंगे? इमाम ख़ुमैनी फरमाते हैं कि यौमुल कुद्स यौम अल्लाह है, यौम रसूलुल्लाह है, यौम इस्लाम है। जो शख्स इस दिन को नहीं बना मनाता वो इस्तेमार का एजेंट
बिल्कुल
है, और सब
बिल्कुल
समझते थे कि भाई यौमुल कुद्स मनाना यानी रैली में शिरकत करना, उसकी अपनी जगह अहमियत है जो कि इस साल शायद उस रैली का माहौल उस तरह से
ना बन पाए
ना बन
ऐसे।
पाए।
لیکن یوم القدس بنانا قلم کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے, یوم القدس بنانا ہنر کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے, یوم القدس بنانا اسی طرح اپنی آواز وہاں تک پہنچانے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے, بیدار کرنے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. تو ہرگز بلکہ شاید اگر کوئی شخص ہنر کا بہترین استفادہ کرے تو وہ نہ صرف اس ریلی کے جو آثار پوری دنیا کے اوپر ہوتے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ فضائے مجازی کے اندر ہی کام کر سکتے ہیں, کہ جس کی مثلا ایک مثال خود یہ پروگرام کا انعقاد کرنا یوم القدس بنانے کے مستحق میں سے آتا ہے. تو ہر شخص اپنی
جی جی بالکل ایسا ہی ہے, چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کی باتوں سے استخراج کی ہیں. یعنی ہر انسان اپنی وسعت کو جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا وسیلہ ہے, اگر وہ اپنی اس وسعت کو بروئے کار لے کر آ جائے اس کا وظیفہ ادا ہو جاتا ہے. ایک افسانہ ہے, آپ کی قصے سے مجھے بھی ایک قصہ یاد آیا اور اس سوال نے رپیٹ ہو گیا ذہن کے اندر. تاریخ میں نقل نہیں ہے لیکن افسانہ ہے, لیکن سبق کے لیے بہت اچھا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا حتماً, جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں کی گئی تو ایک پرندے کی داستان جو ہے وہ ملتی ہے. وہ یہ کہ آگ جب اکٹھی کی جا رہی تھی اتنی زیادہ, اور یہ پرندہ جو ہے وہ آگ جل گئی, پانی کا قطرہ اپنے چونچ میں لے کے جا رہا ہے اور پھینک رہا ہے, تو کسی نے سوال کیا کہ تمہارا اس قطرے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ اتنے سالوں کی اتنے مہینوں کی مثلا ہضم اکٹھا کیا گیا ہے, آگ اتنی بھڑکی ہوئی ہے, تمہاری چونچ چھوٹی سی ہے, کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا وظیفہ ادا کر رہا ہوں کہ کل میں کہہ سکوں کہ میں نے
میرے بس میں تھا,
خاموشی بھی نہیں کی اور جتنا اقدام کر سکتا تھا میں نے کیا. یہ ایک افسانہ واقع اس لیے بنایا ہے تاکہ اسی نقطے کو بیان کیا جائے کہ ہر فرد جس کے جتنی وسعت پائی جاتی ہے,
اور وہ مکلف
اگر جو استاد ہے تو اس کا وظیفہ جو استاد نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے, اپنے شاگردوں کو بیان کرے, یوم القدس کی اہمیت بیان کرے, یوم القدس کی تاریخ بیان کرے, فلسطین کی مقاومتی جو جہاد پائی جاتی ہیں, تحریر ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا, آرٹیکل لکھ سکتے ہیں, وہ لکھیں, سوشل میڈیا پہ تحریر چھوڑ سکتے ہیں, وہ کریں اس میں آ کر. اور اب اس طریقے سے موبائل, ہر ایک پاس سمارٹ موبائل ہے, چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے, اب کرونا کی وجہ سے بہت سارا
ڈی پی بھی لگاتے ہیں نا, ڈی پی بھی اپنی لگاتے ہیں تو اس کی تاثیر ہے. اگر ایک ڈی پی ہم دیکھتے ہیں کہ جم کے اندر اکثریت لوگ لگاتے ہیں, لوگ متوجہ ہوتے ہیں, یہ موضوع ہے اس طرح سے, تو اس کو کم نہ سمجھیں آپ.
اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے نا, ٹی وی پہ کوئی پروگرام چلتا ہے یا کوئی ڈرامہ چلتا ہے, تو عموماً شام کو جب لوگ بیٹھتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈسکشن
کرتے ہیں,
اور بڑی گرم ڈسکشن, ایک ادھر کا طرف لیتا ہے ایک وہ بات کرتا ہے. فلسطین جو کہ جس کو رہبر کبیر انقلاب امام خمینی نے خصوصاً جمعۃ الوداع کو اس کا دن بنایا حد اقلام, اس دن ہی اگر اس کے بارے میں اس طرح بیٹھ کے ڈسکشنز کریں یا فیملی میں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں بات ہو, گفتگو ہو کہ کیا ہے اور کیا نہیں, کیا سلسلہ ہے, تو یہی میرا خیال ہے.
جی بالکل.